नमस्कार श्रोताओ, छिंदवाड़ावलेन से आपका दोस्त योगेश। मध्य प्रदेश में 1 मार्च को वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में बजट पेश किया गया, जिसमें 1 लाख युवाओं को नौकरी का वादा भी शामिल है। इस योजनाओं के माध्यम से लाडली बहना योजनाएं और अन्य योजनाएं भी शामिल हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर अनुप सर जो है। अनुप सर, मोबाइल स्वागत सर।
नमस्कार योगेश भाई, नमस्कार।
सर, इस बजट को कितना संतुलित देखते हैं सर?
यह जो बजट मध्य प्रदेश सरकार ने भी 2023 में पेश की है, यह पूरी तरीके से असंतुलित बजट है। असंतुलित मैं इसलिए कह रहा हूं कि सरकार इस बजट को सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के नजरिए से देखी है, आम जनता की भलाई के लिए नहीं देखी है। इस बजट को अगर आप ठीक से पढ़ेंगे, उठा करके बारीकियों पर ध्यान देंगे, तो यह बजट आम जनता के पक्ष में नहीं है। और इस बजट से विसंगतियों को दूर करने का प्रावधान नहीं किया गया है, बल्कि विसंगतियों को बढ़ावा देने का काम किया गया है। और एक प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने पुनः मध्य प्रदेश के जनता को ठगने का काम किए। वो जो कह रहे हैं कि हम लाडली बहन योजना लेकर के आए हैं, ठीक है, वो मदद करना चाहते हैं, मदद करें, लेकिन इससे अतिरिक्त एक भार पड़ेगा। इससे तो बेहतर होता कि वह विसंगतियों को दूर करना चाहते तो मध्य प्रदेश के नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देते, और उसके साथ साथ पढ़े लिखे जो बहने हैं उनको बेरोजगारी भत्ता देती और रोजगार का संसाधन जुटाते, तो कहीं ना कहीं यह बजट संतुलित होता।
जी सर, इस बजट के माध्यम से जो बेरोजगारी निरंतर बढ़ती जा रही है, उसमें 1 लाख नौकरियों के बजट का जो व्यवस्था की गई है सर, ये युवाओं के लिए कितना प्रभावी देखते सर आप?
युवाओं के लिए कोई प्रभावी नहीं है, ठीक है, 1 लाख नौकरी की व्यवस्था कर दे, अच्छी बात है, सकारात्मक सोच है, सकारात्मक पहल, इसका स्वागत करना चाहिए। परंतु यह भी सोचना चाहिए कि इन्होंने जो कांग्रेस की सरकार थी 15 महीने की, उसके बाद इन्होंने जो विधायकों को खरीद करके सरकार बनाई, लगभग लगभग 3.5 साल, उसमें इन्होंने क्यों नहीं यह काम किए? चुनावी वर्ष का इंतजार क्यों कर रहे थे? चुनाव वर्ष में क्यों कह रहे हैं कि हम 1 लाख वोट देंगे, 1 लाख हम रोजगार देंगे? तो इससे रोजगार का, ठीक है, कुछ सीमा कम हो सकती है, रोजगार बढ़ सकती है, परंतु यह भविष्य के लिए अच्छा बजट नहीं है। इससे नौजवानों को उदासी मिली है, नौजवानों के चेहरे पे खुशियां नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि यह बजट नौजवानों के लिए नहीं है, किसानों के लिए नहीं है, मजदूरों के लिए नहीं है, तमाम आम वर्ग के लिए बजट नहीं है। इस बजट में सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने चुनाव के फायदे को देखी है कि हम किस प्रकार से जनता को प्रभावित कर सकते हैं, हम किस प्रकार से चुनाव में अपना परफॉर्मेंस सही कर सकते हैं।
जी सर, इसी बजट को लेकर इस बजट में व्यवस्था की गई है कि किसानों को 2025 तक सिंचाई क्षेत्र को बढ़ाकर 65 लाख हेक्टेयर करने की जो व्यवस्था रखी है सर, कितनी लाभकारी रहेगी किसानों के लिए?
देखिए, सिंचाई की योजना किसानों के लिए आज जरूरी है, क्योंकि आज मौसम की मार किसान सबसे ज्यादा झेल रहे हैं। लेकिन पानी कहाँ से लाएंगे? उसके लिए कौन सी व्यवस्था कर दी इन्होंने 3.5 साल में? किस नदी को किस नदी से जोड़ने का काम किए है? सबसे जो बड़ी जो समस्या है किसानों के सामने, सिंचाई को लेकर के है और प्राकृतिक आपदाओं से है। इसके लिए हम लोगों के नेता थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, वो कहते थे कि नदी जोड़ो और नदी खोदो, यानी एक नदी को दूसरे नदी से जोड़ो और नदी खोदो नया, ताकि लोगों को काम भी मिलता जाएगा और हर किसान के खेत में पानी भी चला जाएगा। तो इन्होंने कौन सी नदी खोदे है, कौन सी नदी को किस नदी से जोड़ने का काम किया है, कौन से माध्यम से सिंचाई का व्यवस्था कर देंगे? तो यह एक प्रकार से हवा हवाई ये घोषणा है योगेश भाई। आपने न नदियों के जल को खेतों तक पहुंचाने का कोई व्यवस्था किए है, न कोई सिंचाई की व्यवस्था कर रहे, और आप कह रहे हैं कि हम नदियों के माध्यम से हम जल पहुंचा देंगे। कैसे पहुंचा देंगे आप, जब आपके पास कोई कैनल नहीं है, आपके पास कोई नया नहर नहीं है, कोई नदी नहीं जोड़ पा रहे? तो यह तो एक प्रकार से किसानों को सीधा सीधा मतलब अब यह कह दीजिए कि जो असंतुष्ट किसान इनको खुश करने का तरीका है, जबकि इससे किसानों की खेती पे कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं होने वाला है।
जी सर, इस बजट को कितनी अपेक्षाएं देखे, चाहे अतिथि शिक्षक हो, अतिथि विद्वान हो, कोतवाल हो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, किस उम्मीद से देखे इस बजट को? उस बजट में 17,000 शिक्षकों की भर्ती का भी प्रावधान रखा गया है सर, इस बजट को कितना प्रभावी देखते सर?
देखिए, बजट कल पेश हुआ है
जी
और इस बजट के ऊपर कल से जो आप जिन जिन संगठनों का चर्चा की है, विशेष करके अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान, आशा उषा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, कोटवार, उनके नेताओं का स्टेटमेंट पढ़िए, उनके संगठनों को पढ़िए कल से। वो लोग साफ कह रहे हैं कि ये बजट हमारे लिए नहीं है, और वास्तव में उनका नाम इस बजट में कहीं उल्लेख नहीं। अगर सरकार उनका भला करना चाहती तो उनका नाम लिखती कि इतना बजट अतिथि विद्वानों के लिए है, इतना बजट अतिथि शिक्षकों के लिए है, इतने बजट का प्रावधान हमने कोटवार के लिए किए, उषा आशा कार्यकर्ताओं के लिए किए, लेकिन सरकार ने ऐसा कहीं बजट में कोई उल्लेख नहीं किया है विधिवत और विभिन्न प्रकार का। तो नहीं किया है तो कैसे कर देंगे, और उन्होंने इसमें साफ साफ लिखा भी नहीं इस बात के लिए। तो उनके नेताओं को पढ़िए, उन संगठन के नेताओं के स्टेटमेंट को देखिए, कल से वो चिल्ला रहे कि हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं किए। और ये दूसरी बात ध्यान रखिए योगेश भाई, इनकी संख्या बहुत बड़ी है, अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान, कोटा और आशा उषा कार्यकर्ता। अगर यहाँ मिलकर के लड़ लिए, अगर अपने में बात करके गठबंधन करके अगर चुनाव लड़ लिया, किसी को समर्थन कर दिए, तो ये सरकार के लिए घातक हो जाएगा। इनको नजरअंदाज करना सरकार को पिछले साल भी महंगा पड़ा था और इस साल भी महंगा पड़ सकता है अगर सरकार इनके तरफ ध्यान नहीं देती है तो। क्योंकि यह तबका, विशेष करके अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक, यह पढ़ा लिखा तबका है, यह जानता है कि वोट की कीमत क्या होती है और वोट कहाँ देना चाहिए और क्या हम करेंगे तो क्या बदलाव हो सकता है।
जी सर, सर देश का 65% युवा है और वह इन दिनों बेरोजगार है। युवाओं को बहुत अपेक्षा थी इस बजट से कि उनको भी कुछ इस बजट में मिलेगा, लेकिन सर युवाओं के लिए कितना लाभकारी देखते हैं, कितना प्रभावी देखते हैं जिस तरीके से
बेरोजगार। जो सरकारें बन रही है, जो सरकारें चल रही है, यह सरकार कारपोरेट की सरकार है। इस सरकार को न जनता चला रही, न हम चला रहे, न आप चला रहे, इस सरकार को कारपोरेट जिंदा कर रही है, कारपोरेट चला रही है, कारपोरेट गिराती है, कारपोरेट बनाती है, कारपोरेट अपने लाभ के लिए देखती है। कारपोरेट से ये दल बड़े बड़े चंदा लेते हैं, कारपोरेट इनको इलेक्ट्रल बांड देता है और उन्हीं के कहने पर यह बजट को प्रस्तुत करते हैं। एक तरीके से ये बजट अगर देखा जाए तो आजकल के जो बजट बन रहे हैं वो कारपोरेट घराने में बैठ करके बन रहे, कारपोरेट के ऑफिसों में बन रहे हैं, किसी विधानसभा और किसी कार्यालय में नहीं बन रहे हैं। तो इस बजट से युवाओं के लिए कोई आशा नहीं, युवा हताश हो रहा है, युवा बेरोजगार हो रहा है। क्योंकि जो छोटे छोटे रोजगार होते हैं उससे हर हाथ को काम मिलता है, परंतु सरकार आज बड़ी बड़ी मशीनों की गुलाम होती जा रही है, बड़ी बड़ी कारपोरेट घरानों की गुलाम होती जा रही है, तो उससे रोजगार पे कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ने वाला है। इसके विपरीत जाकर के देखेंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी। और आज के डेट में भी आप लिख लीजिए और अगले साल जब ये बजट पेश करेंगे तभी आप देख लीजिएगा कि कितना इन्होंने रोजगार के मामले को हल किए है, कितना रोजगार बढ़ाए है। ये रोजगार बढ़ाने का बजट नहीं है, बल्कि रोजगार जो चल रहा है उसमें और विसंगति बढ़ाने का बजट है। एक तरफ यह महंगाई बढ़ा दी, यह करे कि हमने पेमेंट बढ़ाया, पेमेंट कितने लोगों का बढ़ा होगा, सरकारी कर्मचारियों का बढ़ा होगा, किसान का कौन सा पेमेंट बढ़ गया, मजदूर का कौन सा पेमेंट बढ़ गया, उसको कौन सा टीए और डीए मिलता है। लेकिन यह लगातार आज देखिए कि गैस के दाम बढ़ गए 50 रुपया और खाने पीने के सामान पे इन्होंने जीएसटी लगा दिया। क्यों नहीं बजट में कहा गया कि जो खाने पीने पे जीएसटी लगाया गया हम उसको वापस लेंगे? क्यों नहीं सरकार ने बजट में प्रावधान किया कि हम अपने यहाँ जो गैस के दाम नहीं बढ़ाएंगे? क्यों नहीं सरकार प्रावधान किया कि हम शिक्षा निःशुल्क करेंगे, हम चिकित्सा को निःशुल्क करेंगे, आयुष्मान कार्ड हम सभी लोगों को देंगे? तो बजट में इन प्रावधानों को व्यवस्था नहीं की गई, सेवा का प्रावधान नहीं है बजट में, बल्कि कारपोरेट घराने को बढ़ावा देने के लिए बजट है।
तो ये थे डॉक्टर अरुण सर, जिन्होंने मोबाइल वाणी पर मध्य प्रदेश बजट 2023 को लेकर अपनी राय दी। अनुप सर, मोबाइल वाणी को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
जी योगेश भाई, नमस्कार।
छिंदवाड़ा वाले सबका दोस्त योगेश, धन्यवाद।